मंदिर खुल गया, मैं मंगल मंदिर खुल, बड़ी सुंदर प्रार्थना परमेश्वर से अति उत्कंठित दर्शन को जब खड़ा द्वार पर दे, महामनोहर राम नाम में मूर्तिमान हरि होलो, महामनोहर राम नाम में मूर्तिमान हरि होलो, जिनका नाम है राम वे मूर्तिमान हो जाए, परमेश्वर से प्रार्थना स्वामी जी महाराज कर रहे हैं। हे राम जी, जिनका ये नाम है वे मूर्तिमान हो जाए, वे इसमें नामी कौन है हम नहीं जानते, आप तो जानते हो ये मेरा नाम है, आप मूर्तिमान हो जाएगा, ये तो नाम भगवान के दर्शन है। नामी जिनका नाम है मूर्तिमान हरि, दो दिव्य दर्शन देव देव जी, दया दृष्टि से देखो, शब्दों पर ध्यान दो देव सचिन, दो दिव्य दर्शन देव देव जी, दया दृष्टि से देखो और लगा गले लगा के, और का अर्थ गले लगा के और लगा उत्संग में लेकर अपनी गोदी में, उत्संग अर्थात गोदी में। स्वामी जी महाराज की कितनी गहरी प्रार्थना है, और लगा उत्संग में लेकर गोदी में लेकर प्रेम स्वरों से बोलो, मेरे से बोलो पाप करो मेरे साथ, प्रेम स्वरों से मंगल मंदिर खोलो, दया में मंगल मंदिर खोलो। मंगल मंदिर खोलो दया में, मंगल मंदिर खोलो, मंगल मंदिर खोलो दया में, मंगल मंदिर खोलो, मंगल मंदिर खोलो, मंगल मंदिर खोलो, मंगल मंदिर खोलो, मंगल मंदिर, मंगल मंदिर खोलो, मंगल मंदिर, मंगल मंदिर खोलो दया में, मंगल मंदिर खोलो, मंगल मंदिर खोलो दया में, मंगल मंदिर खोलो, मंगल मंदिर खोलो, मंगल मंदिर, 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 मंगल मंदिर खोलो दया में, मंगल मंदिर खोलो, मंगल मंदिर खोलो दया में, मंगल मंदिर, मंगल मंदिर खोलो दया में, मंगल मंदिर खोलो, मंगल मंदिर खोलो दया में, मंगल मंदिर, मंगल मंदिर खोलो दया में, मंगल मंदिर खोलो, मंगल मंदिर खोलो दया में, मंगल मंदिर, मंगल मंदिर खोलो दया में, मंगल मंदिर खोलो, मंगल मंदिर खोलो दया में, मंगल मंदिर खोलो दया में, मंगल मंदिर खोलो, मंगल मंदिर खोलो दया में, मंगल मंदिर खोलो, मंगल मंदिर खोलो दया में, मंगल मंदिर खोलो। सुंदर सुंदर बहुत बहुत धन्यवाद देवी सचिन, काश राम के अतिरिक्त कोई भरोसेमंद होता इस संसार में, कभी गलती ना करना, जब भी इंसान पर भरोसा करोगे मार खाओगे। क्या पति भरोसेमंद है, क्या पत्नी भरोसेमंद है, कब जगत को छोड़ के चले जाएंगे, आपको विधवा बना के चले जाएंगे, क्या कोई गारंटी ले सकता है, इस संसार में कुछ भी भरोसेमंद नहीं है एक परमात्मा के सिवा। अतएव राम भरोसा तेरा, अब मुझे राम भरोसा तेरा। राम के सहारे जीवन व्यतीत करोगे तो उस जैसा भरोसेमंद और कोई नहीं, कोई टांग नहीं खींचेगा। बाकी सब कब टांग खींचाएंगे, कब धक्का दे देंगे, कब छोड़ के चले जाएंगे, कुछ नहीं कहा जा सकता। अब मुझे राम भरोसा तेरा। व्यवहारिक दृष्टि से देवी सचरों संसार में रहना है, बस यहां रहना है, फंसना नहीं। इतनी सी गुंडी है, समझ में आ जाए तो फिर जिंदगी में कोई कठिनाई नहीं है। आदमी फंस जाता है तो फिर वियोग पर रोएगा भी, बिलखेगा भी, छाती पीटेगा। यही ये है कि जो आया था उसे जाना था, चला गया, बात खत्म। एक साधु की समझदारी तो इसी नहीं है, एक साधु का साधुपना तो इसी नहीं है। व्यक्ति पर खुद उसी वक्त जाता है जिस वक्त मुसीबत सिर पर आती है। उपदेश देना, आदेश देना, स्वाध्याय करना, सत्संगों में जाना, ये सब बात आसान रहते हैं, लेकिन जब विपत्ति आती है तो साधक, चलो एक साधक किस प्रकार से उस विपत्ति को डील करता है, तब पता लगता है कि साधक कहां पहुंची हुई है, साधना कहां पहुंची हुई है। मामूली सा रोग लगा, डगमगा के विचलित हो गए तो ये साधक बना तो नहीं है। तो सामान्य व्यक्ति जैसी बातें होती हैं, ये गुलाम नाम का प्रताप तो नहीं है। फिर क्या हो गया, ये हो गया, फिर क्या हो गया। साधक की दृष्टि इस प्रकार की हो जाती है। राम इच्छा से नहीं हुआ है ना, मेरी इच्छा से तो नहीं हुआ। कौन चाहता है कि मेरी पत्नी मर जाए, कौन चाहता है मेरा पति मर जाए, मर गया, क्या कर सकते हो आप। एक साधक इसी चीज को सोचता है, भाई जो मेरे वश की बात नहीं, मैं उस पर चिंता क्यों करूं। परमेश्वर ने जो करना था तो कर दिया, होता तो वही है जो उसकी इच्छा होती है। ये एक साधक का दृष्टिकोण हो जाता है, यही बेटा सही दृष्टिकोण है। और एक साधक की साधकाई इसी से पहचानी जाती है कि आप किस ऊंचाई तक पहुंचे हुए हो। कोई बात नहीं, परमेश्वर का दिया हुआ ही है ना, परमेश्वर का दिया हुआ जो हुआ करता है उसे प्रसाद कहा जाता है, उसे दुख नहीं कहा जाता, उसे वियोग नहीं कहा जाता, उसे विपत्ति नहीं कहा जाता। जो परमात्मा से युक्त हो गया, जो उसके घर से मिलता है, ऐसी एक साधक की धारणा हो जाया करती है और वह प्रसाद हुआ करता है। प्रसाद कोई नाक में सिकोड़ के तो ग्रहण नहीं करता, दोनों हाथों से ग्रहण करता है और प्रसन्नता पूर्वक आप ग्रहण करते हो। मंदिर में जाते हो, छोटा बच्चा भी यदि आपको प्रसाद देता है तो आप ये नहीं समझते कि ये छोटा बच्चा है, कल का बच्चा है, छोकरा है, मुझे प्रसाद दे रहा है। नहीं, ये भगवान के घर से आ रहा है। आप दोनों हाथ इस प्रकार से करके तो प्रसाद ग्रहण करते हो, माथे पर उसे लगाते हो, तो फिर दुख आता है। तो उसे परमात्मा का प्रसाद क्यों नहीं समझते। जब ऐसा बोध हो जाए तो समझ लेना आपकी साधना ठीक दिशा में चल रही है, उच्च अवस्था को प्राप्त हो रही है, आप साधना में ऊपर उठ रहे हैं, अन्यथा नहीं। कल की चर्चा को साधक जारी रखते हैं, सिमरन पर चर्चा चल रही है। भगवान श्री से किसी व्यक्ति ने प्रश्न पूछा, नारद जी ने, नारद जी ने तो पूछा था आपका सर्वश्रेष्ठ भक्त कौन है। इस व्यक्ति ने पूछा, परमात्मा देव आपका सर्वप्रिय भक्त कौन है। अमुक गांव में पता दे दी, अमुक गांव में एक बहुत बड़ा पेड़ है, उसके पास घर है। उस वक्त की बात होगी जब घरों के नंबर नहीं होते थे, कोई चित्र दिए जाते थे। बहुत बड़ा विशाल पीपल का पेड़ है, गांव में एक ही पेड़ है, उसके पास उसका घर है, वह मेरा सर्वप्रिय भक्त है। व्यक्ति ढूंढता ढूंढता गांव पहुंचा है, जो का पेट है, एक तो दिख रहा है मामूली व्यक्ति के घर है, मानो वह अपेक्षा रख रहा था कोई कुटिया होगी, कोई संत महात्मा होगा, कोई गुफा होगी, कोई दाढ़ी बढ़ाए हुए व्यक्ति होगा, कोई सिर मुंडवाए हुए व्यक्ति होगा, कोई भव्य कपड़े वाला व्यक्ति होगा जो परमात्मा का सर्वप्रिय, ऐसी धारणा हम सबकी, ऐसा ही हम सबका विश्वास है। मन ही मन शंका हुई, मैं गलत जगह पर आ गया हूं या भगवान ने मुझे पता गलत बता दिया है, तो पुनः गए भगवान के पास, कहा महाराज में वहां देख के आया हूं, वहां मुझे कोई साधु संत महात्मा कोई ऋषि मुनि जैसा व्यक्ति तो कोई नहीं दिखाई दिया। नहीं भाई, जिसे तुम संत महात्मा ऋषि मुनि समझते हो, पता नहीं मैं उसे समझता हूं कि नहीं समझता, बात तो मेरी समझ की है। मैं किसे संत महात्मा समझता हूं, कोई गृहस्थी हो सकता है, कोई परिवार में रहने वाला भी हो सकता है जिसके अंदर संत के गुण है, साधु के गुण है, मैं संत है वेश से नहीं, मैं वेश की इतनी कदर नहीं करता, हां थोड़ा बहुत जरूर नंबर देता हूं लेकिन ऐसा नहीं है, तुम ठीक जगह पर गए हो, वही वो रहता है। पुनः गया, एक किसान मिला, एक किसान से पूछा जाके, बंधु यहां कोई मंदिर है? नहीं। फिर आप कहां जाते हो? कहीं नहीं जाता, मेरा खेत है ना, सुबह वहां निकल जाता हूं, खेती का काम करता हूं, शाम को वापस लौटता हूं, जल्दी उठता हूं ताकि जल्दी काम शुरू हो जाए, अकेला आदमी हूं, कोई सहायता नहीं, अकेले को सब कुछ करना पड़ता है, शाम तक थका मांदा आता हूं वापस आ जाता हूं, आके अपना खाना वाना खाया आराम से सो जाता, यही मेरा नियम है, मैं कहीं नहीं जाता, कहीं सत्संग में कोई यहां होता है, कोई संत महात्मा यहां आते हैं तो सत्संग में जाते हैं, नहीं भाई छोटा सा गांव है यहां कोई सत्संग भी नहीं होता, यहां मैं जाऊं? कोई गुरुद्वारा है? नहीं, गुरुद्वारा भी नहीं है, कोई और जगह है यहां पर? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। आप क्यों पूछ रहे हो ऐसी बातें? उसको कुछ नहीं कहा, पुनः भगवान के पास, कहा महाराज एक व्यक्ति तो मिला है मुझे, पर वो न मंदिर जाता है, न कोई पूजा करता है, न कोई माला फेरता है, न राम राम जपता है, अमृत पानी का पाठ नहीं करता, कुछ नहीं करता, कहीं जाता आता नहीं है, कहता मैं खेत में जाता हूं सुबह, रात को लौट आता हूं, शाम को लौट आता। भगवान श्री कहते हैं व्यक्ति तो वही है, वही मेरा सत्प्रिय भक्त है, तो उसी से फिर जाके पूछ, उसी से जाके चर्चा कर गया है, अब आश्वासन हो गया, पक्का हो गया कि भगवान का सर्वप्रिय भक्त यही है, तो उसे सीधा सादा पूछा, भाई भगवान तुम्हें सर्वप्रिय भक्त मानते हैं, ना तुम मंदिर जाते हो, ना तुम परमात्मा को याद करते हो, कोई सिमरन इत्यादि, कोई सिमरन आपके हाथ में नहीं, कोई माला हाथ में नहीं, फिर ऐसा कौन सा कर्म है आपका जिसके कारण परमात्मा आपको अपना सर्वप्रिय, प्रिय नहीं सर्वप्रिय भक्त मानता है? अब किसान मुख खोलता है, कहता है बंधु स्मरण उसका किया जाता है जो कभी भूला हुआ हो, जो कभी भूला ही नहीं उसे याद किस लिए करता, ले राम जिसे तू कहता है कि मैं स्मरण नहीं करता, मेरे श्वास श्वास में बसता है, मेरे रोम रोम में रमता है, मेरी रग रग में रमता है, मेरे खून में उसी का प्रवाह होता है, मैं तो कभी उसे भूला ही नहीं, वह मेरे अंग संग है, आगे पीछे ऊपर नीचे आगे इधर उधर सब जगह सर्वत्र मुझे राम ही राम दिखाई देता है, तो मुझे विशेषता याद करने की क्या आवश्यकता है, संसार की हर घटना जो कुछ मुझे दिखाई देती है वह मुझे राम की याद दिलाती है, मुझे राम को याद करना नहीं पड़ता, मुझे राम याद रहता है। अंतर है ना, मानो सिमरन की तीन श्रेणियां, याद करना, याद आना और याद रहना, तीन बातें। याद करना, आप जाप करते हो, सत्संग के लिए आए हो, मानो आप कोशिश कर रहे हो परमात्मा को याद करने की, परमात्मा का स्मरण बना रहे, इसलिए यहां आए हुए हो। माला आपके हाथ में होती है, आपको माला दी जाती है तो आपको यही कहा जाता है ना, याद दिलाएगी कि आपको राम राम जपना है, परमात्मा का स्मरण हो, ये माला आपको याद दिलाती है। गिनती की बात तो बाद में है, पर पहले किस लिए, कि आपको याद दिलाती है माला कि आपने राम राम जपना है, मानो परमात्मा का स्मरण। इसे कहते हैं याद करना, याद आना, स्मरण आना। ये क्या हुआ, घर में कोई मृत्यु हो गई हुई है, काफी वर्ष हो गए, 5 साल हो गए, 6 साल हो गए मृत्यु हुई, किसी पड़ोसी के घर की मृत्यु हुई है, उसकी मृत्यु ने आपको अपने घर की मृत्यु को याद दिला दी, तो इसे कहेंगे याद आना। थोड़ी देर के लिए याद आती है, उसके बाद फिर भूल जाती है। याद करना, जब तक माला है याद, जब तक सत्संग में बैठे हुए स्मरण सिमरन होता रहता है, फिर आदमी भूल जाता है। याद आना, मानो वह घटना खत्म हो गई, वह उसका विस्मरण हो गया, रात को सो गया, घटना फिर विस्मरण हो गया। याद रहना, इन सब चीजों से ऊपरी चीज है याद रहना। फिर याद करना नहीं पड़ता, याद आना नहीं होता, याद रहती है। इसका संबंध, सिमरन का संबंध, सिमरन की क्या खूबी है देवियों सज्जनों, सिमरन हाथों से नहीं होता, हाथों से काम होता है, चाहे माला आप फिर रहे हो, चाहे कुछ भी कर रहे हो, सिमरन हृदय से होता है। काम बाधा नहीं है, आपका काम काज, आपका कर्तव्य कर्म सिमरन में बाधा नहीं है। हमें उस कक्ष तक पहुंचना है, उस कक्षा तक पहुंचना है, उस मंच तक पहुंचना है, सिमरन भी होता रहे और काम काज भी होता रहे। अपनी साधना में मन को इस प्रकार से सिधारना है, अभ्यास के माध्यम से एवं परमेश्वर की कृपा से, दोनों बातें जरूरी हैं। अभ्यास भी सतत निरंतर अभ्यास चाहिए और फिर परमात्मा की कृपा चाहिए देवी, दोनों से उपलब्धि क्या होगी, वह परमात्मा कभी भुलाने पर भी भूलेगा। गोपी मुझे ऐसी प्रीति हो जाएगी, आज ही गोपी यमुना के किनारे अकेली बैठी है आंख बंद करके, देवऋषि नारद आकाश मार्ग से जा रहे हैं, देखा ये भक्ति भूमि ने, प्रेम भूमि ने, ये एक योगिनी कहां से आ गई है। मानो देवऋषि को लगा ये ध्यानस्थ बैठी है। उस वक्त की बात जब भगवान श्री कृष्ण ब्रज छोड़ के तो चले गए हुए थे, अकेली ध्यानस्थ बैठी हुई है। देवऋषि नारद उसके पास उतरे, उसे कोई सुध-बुध नहीं है, अपनी वीणा की झंकार करनी पड़ी तो इसकी आंख खुली, सामने देवऋषि प्रणाम किया। अरे तो क्या कर रही थी, ध्यान में भगवान को, कृष्ण को याद कर रही थी, नाम न लो उसका, गोपी कहती है नाम न लो उसका, मैं उसे याद नहीं कर रही थी। गोपी की दशा देखो, कहती है रोज अपना घर बुहारती हूं, जितना हिस्सा बुहारती हूं वह काना आके उतना ही उसी वक्त गंदा कर देता है। दूध निकालने के लिए बैठती हूं, पीछे आके मेरी चोटी खींचता है, बैनी खींचता है, दूध की धार मेरे मुख में मार, मैं दूध की धार उसके मुख में मारती हूं तो बाद में देखती हूं जमीन पर दूध गिरा हुआ होता है। धान कूटने के लिए बैठती हूं, धान कूटती हूं तो मूसल पकड़ लेता है, छोड़ इस काम को, पहले मेरे साथ खेल। उसने मेरे नाक में दंक रखा हुआ है, मुझे कुछ नहीं करने देता। देव ऋषि वह होता नहीं है, कहता है मेरे मुंह में धार मार दूध की, वह होता नहीं है, दूध जमीन पर गिरता है, मेरा मूसल पकड़ता है धान कूटते हुए, तो होता नहीं है वहां पर, ये मेरे मन के भ्रम है, मैं क्या करूं, मेरा मन मेरे वश में नहीं रहा, मैं उसे याद करने की कोशिश नहीं कर रही, मैं उसे ध्यान के माध्यम से, योग के माध्यम से उसे भुलाने की कोशिश कर रही हूं कि वह किसी ढंग से मेरे मन में इस प्रकार से बसा हुआ है, वह मेरे मन से निकले। ऐसी प्रीति, ऐसा सिमरन, वास्तविक संपत्ति, जितनी भी आप विपत्तियां, कल चर्चा जारी रखेंगे, जितनी भी आप विपत्तियां जानती हो, जानते हो, उनमें से कोई विपत्ति विपत्ति नहीं है। संत महात्मा कहते हैं मर गया कोई विपत्ति नहीं है, रोग आ गया विपत्ति नहीं है, अपने ऊपर रोग आ गया, अपनों के ऊपर रोग आ गया, कोई मुकदमा हो गया, कोई अपमान हो गया, कोई तिरस्कार हो गया, कोई कुछ हो गया, कोई कुछ हो गया, ये विपत्तियां नहीं है, नौकरी नहीं मिल रही ये विपत्ति नहीं है, प्रमोशन रुकी हुई है ये विपत्ति नहीं है, व्यापार में घाटा ही घाटा पड़ रहा है, संत महात्मा कहते हैं ये विपत्ति नहीं है, घर के झगड़े हैं ये विपत्ति नहीं है। संत महात्मा ठोक बजा के कहते हैं विपत्ति वह है जब परमेश्वर का विस्मरण हो जाए, जब परमात्मा भूल जाए तो ये सबसे बड़ी विपत्ति है, इससे बड़ी विपत्ति और कोई नहीं। इस विपत्ति को जो जानता है और उस संपत्ति जिसे सिमरन कहा जाता है, उस संपत्ति को जो पा लेता है, उसकी दृष्टि में ये छोटी मोटी विपत्तियां उसे स्पर्श तक नहीं करती हैं। दांत की दर्द आदमी झट से भूल जाता है जब गुर्दे की दर्द होने लगती है, जब ये विपत्ति हो जाए तो फिर गुर्दे की दर्द ही याद रहती है, दांत की दर्द मामूली बात है, आदमी भूल जाता है, ऐसे छोटी मोटी विपत्तियां आदमी भूल जाता है। कल करेंगे सब जब आगे की चर्चा, आज यही समाप्त करने की इजाजत दीजिए।